ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 9 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 15. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஞான மே பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்னா கர்தே ஹுயே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கே ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்ஞாந்திமிரந்தஸ்ய ஞானஞ்சனாஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாத் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதம்ஷ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபீஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரே விருஷபானோ சூதிதேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபாசிந்துப்ய ஏவச பதீதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவிந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிரந்தாஜ் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாதக்கி ஜெய ஹோ. அத்தியாயனோ ஸ்லோக் சாங்கியா 15. ஏ பகுத் ஹி மகத்வபூர்ண ஸ்லோக் ஹே. கிருப்யா மேரே சாத் சாத் ஸ்லோக் கோ உச்சாரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹே, ஞான யக்யேன சாப்யன்யே யஜந்தோ மாம் உபாஸதே ஏகத்வேன ப்ருதக்த்வேன பஹுதா விஶ்வதோ முகம். ஞானயக்யேன சாப்யன்யே யஜந்தோ மாம் உபாஸதே ஏகத்வேன ப்ருதக்த்வேன பஹுதா விஶ்வதோ முகம். ஞானயக்யேன சாப்யன்யே யஜந்தோ மாம் உபாஸதே ஏகத்வேன ப்ருதக்த்வேன பஹுதா விஶ்வதோ முகம். சப்தார்த்த ஞான யக்யேன அர்த்தாத் ஞான கே அனுஷீலன் த்வாரா ச அபி மன நிச்சயி அன்யே अन्य मतलब दूसरे लोग जो अब तक बताए गए हैं उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा माम उपासते। यजंत मतलब यज्ञ करते हैं और माम उपासते अर्थात कृष्ण कहते हैं वो मेरी पूजा करते हैं। और उसके कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं वो अगली लाइन में कहते हैं। एकत्वेन अर्थात एकांत भाव से, पृथक्त्वेन अर्थात द्वैत भाव से, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से, विश्वतोमुखम अर्थात विश्वरूप में। अनुवाद, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भक्त में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते वे महात्मा हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते हैं किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते रहते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है। एक परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। नंबर दो परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीन भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यता निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। और तृतीय कोटि के वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या परम सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान ही का एक स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। भगवान अत्यंत ही अपने विभिन्न प्रकार के उपासनों के विषय उपासक जो हैं उनके विषय में बता रहे हैं। अब इस चैप्टर को हमें क्योंकि इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान राज विद्या राज गुह्य। इसमें बहुत ही सीक्रेट और सारी चीजें भगवान ने बहुत ही विस्तार से बताई हैं। अब इस चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा पिछले श्लोकों में जाएं तो सबसे पहले भगवान ने इस ज्ञान की महिमा जो अभी भगवान हमें बता रहे हैं उसके विषय में कहा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्यय। अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। ये विद्याओं का राजा है। जितनी भी विद्याएं हैं उनमें सबसे महान विद्या मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम उत्तमम है और ये करने में बहुत सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये करने में भी बहुत सरल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसमें श्रद्धा नहीं रखते। तो जो श्रद्धा रखते हैं और जो नहीं रखते उनके विषय में भगवान ने कहा कि जो श्रद्धा नहीं रखते अशुद्ध दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो तो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसे यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान ने जो कहा है उस बात पे हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, और अगर श्रद्धा रखेंगे तो भगवान ने क्या कहा, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जितने भी अशुभ हैं तुम्हारे जीवन में, जो भी अमंगल है, जो भी दुर्घटना है, जो भी बुरा है, वो सब से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, केवल किसमें, भगवान के इन शब्दों में श्रद्धा रखने से। उसके बाद श्लोक नंबर 4 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक भगवान ने इस भौतिक जो प्रकृति है उसके साथ अपने संबंध के विषय में बताया कि इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सृष्टि का सृजन हो रहा है, चाहे संहार हो रहा है या पालन हो रहा है, वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे कारण हो रहा है, और न केवल मेरे कारण हो रहा है बल्कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कारण कार्य कर रही है, सबका कंट्रोलर मैं हूँ और मैं ही सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और उसी मेरी शक्ति के कारण ही इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। लेकिन उसके बाद भगवान ने श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 15 तक हमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बताया कि जो मैंने अभी बताया है 1 से लेकर 10 तक, श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक, उसको जो पूरा का पूरा गलत समझते हैं वो कौन होते हैं, अभी जो नहीं समझते इसको वो अश्रद्धावान होते हैं, उनका क्या होता है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, और वो कैसे होते हैं वो भगवान ने बताया श्लोक नंबर 11 में। भगवान ने कहा अवजानन्ति मामूढ़ मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, वो मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, जब मैं मनुष्य देह में आता हूँ तो वो मेरा उपवास करते हैं, वो मुझे पूरा का पूरा गलत समझते हैं, उनके साथ क्या होता है, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता, उनका सब कुछ निष्फल हो जाता है, उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान, वो सब निष्फल हो जाता है और वो राक्षसी और नास्तिक विचारों के द्वारा आकृष्ट होते रहते हैं और वो सदैव मोहग्रस्त होते हैं, कौन, जो मेरे इस ज्ञान को पूरा का पूरा गलत समझते हैं। उसके बाद भगवान ने बताया कुछ वो होते हैं जो मेरी इन बातों को पूरा का पूरा सही मानते हैं, एकदम जो कृष्ण ने कहा वो बिल्कुल सही है, हम उसी को मानेंगे और उसी के अनुसार आचरण करेंगे, तो वो कौन होते हैं, भगवान ने श्लोक नंबर 13 और 14 में उनके बारे में बताया। श्लोक नंबर 13 में भगवान ने कहा वो जो मुझे पूरा का पूरा सत्य मानते हैं, मेरे वाक्य को पूरा का पूरा सत्य मानते हैं, जो मेरी शरणागति होते हैं, वे महात्मा हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताद्यम अव्ययम्, वो जान जाते हैं कि मैं ही समस्त भूतों का आदि हूँ, स्रोत हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं कभी नाश मेरा नहीं होगा, इसलिए भजन्ते अनन्य मनसो, वो किसी और का भजन नहीं करते, खाली मेरा भजन करते हैं और मेरी दैवी प्रकृति के द्वारा आश्रित होते हैं, वो महात्मा हैं। और उनके लक्षण क्या होते हैं, वो श्लोक नंबर 14 में भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तस्य दृढव्रता, वो सतत मेरा कीर्तन करते हैं, उनका एक ही काम है, जब उनको पता चल गया मेरी बात पर उन्होंने विश्वास कर दिया कि मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं प्रकृति को कंट्रोल करने वाला, मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं संसार में और कोई कुछ करने वाला, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में हो रहा है तो भला वो और क्या काम करेंगे। उनका एक ही काम होता है, सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, और यतन्तश्च दृढ़व्रता, बहुत ही दृढ़ संकल्प के द्वारा वो यतन करते हैं, प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करने का। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, क्योंकि मेरी बात पर विश्वास करते हैं, मेरे शास्त्र पर, शास्त्र में जो मैंने कहा है उस पर श्रद्धा रखते हैं, पूरा का पूरा सत्य मानते हैं, तो वो महात्मा है। और वो बड़ी भक्ति के साथ नित्य युक्ता उपासते, सदैव नित्य युक्ता मतलब सदैव लगे रहते हैं मेरी पूजा में। वो कोई कार्य अगर भौतिक कार्य भी करते हैं तो मेरी पूजा समझकर करते हैं। और आज जो भगवान बता रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञेन चाप अन्ये, अभी उन लोगों के विषय में भगवान बता रहे हैं जो भगवान को, भगवान की बात को, भगवान के शब्दों को पूरा का पूरा सही नहीं मानते, सही तरह से समझते नहीं हैं, लेकिन पूरा का पूरा गलत भी नहीं समझते हैं। यानी कि भगवान की बात को थोड़ा बहुत समझते हैं, पूरा का पूरा सही, अभी पूरा का पूरा गलत मानते हैं। उसके विषय में भगवान ने कहा ना, मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान, उनका तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा और वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो पूरा समझते हैं सही, वो क्या कैसे होते हैं, वो तो उनका तो और कोई काम होता ही नहीं है, सततम कीर्तयन्तो माम। लेकिन ये जो सेंटर के लोग होते हैं, मतलब शुद्ध भक्त और एथिस्ट जो मायावादी हैं, उनके बीच में कुछ लोग होते हैं, उनके विषय में भगवान आज बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, ज्ञान यज्ञेन, मतलब वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। शास्त्र को तो मानते हैं, ज्ञान शास्त्र से लिया जाता है, शास्त्र को तो मानते हैं, लेकिन भगवान आगे कहते हैं चाप अन्य, वो दूसरे लोग होते हैं, और शास्त्र को अपने अपने चेतना के अनुसार समझते हैं। वो क्या करते हैं, यजत अन्य यजंतो माम उपासते। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक शब्द बहुत ही सुंदर कहा है, माम उपासते, वो भी मुझे पूजा करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं, उनके तीन प्रकार भगवान ने यहाँ पर बताए हैं। पहला है एकत्वेन, एकत्वेन का मतलब है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने हमें इसमें बताया कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करना, यानी कि वो ये सोचता है कि परमेश्वर और मैं एक ही हैं, एकत्व, वो भी भगवान भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो सब जीवों के अंदर भी आत्मा है, तो कोई अलग से भगवान सेपरेट नहीं है, तो जीव ही आत्मा है। मानी कि वो क्या समझता है, अहम भरमास्मी एकत्वेन। श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें बताया कि ये सबसे नीचे स्तर के ज्ञान योगी होते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञेन चाप्यने, मतलब व्यक्ति अपने ज्ञान की शक्ति इस्तेमाल करता है और यज्ञ करता है, ज्ञान से, अपने ज्ञान से वो भगवान की उपासना करता है, जितना उसकी बुद्धि में समझ में आता है, शास्त्र के अनुसार ज्ञान लेता है लेकिन जितना उसको समझ में आता है, तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, यानी आत्मा सुपरमात्मा, जो आत्मा है वही भगवान है, तो फिर उसी की पूजा, हर किसी में भगवान देखो, है ना, कुछ बताते हैं ना जो ज्ञान योगी होते हैं, वो बोलते हैं हर किसी के अंदर भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो आप ही पूज्य हो, मैं ही पूज्य हूँ, पृथक कोई भी पूज्य नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि वो अपने को ही परमेश्वर तथा अपने आप को एक मानकर अपनी ही पूजा करते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी ने इसको बोला सबसे निचले स्तर के, सबसे निचले स्तर के क्यों हैं, क्योंकि भक्ति के लिए जरूरी है कि आराधक और आराध्य के मध्य में भेद हो, है ना, एक भक्त होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए, लेकिन यदि भक्त और भगवान का भेद ही मिट जाए, अगर भक्त और भगवान एक ही हैं, तो भक्ति की संभावना ही नहीं है। भक्ति के लिए भगवान को भक्त से विभिन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो भगवान ने बताए हैं तीनों वो मायावाद नहीं है, क्योंकि मायावादी जो होते हैं वो भगवान के किसी भी स्वरूप को मानते ही नहीं है, वो भगवान के हर एक रूप को माया मानते हैं, मगर ये भगवान के ब्रह्म स्वरूप को मान रहे हैं कि भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो हमारा एक ही स्वरूप है। तो ये जो मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं एकत्व है ना, कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, यदि मैं भगवान के साथ लीन हो जाऊंगा तो मैं ही भगवान हूँ, तो मैं ही आराध्य हूँ, मैं ही आराधक हूँ और मैं ही आराध्य हूँ, वो ये सोचते हैं। ठीक, अभी दूसरे क्या है, पृथक्त्वेन बहुधा। पृथक्त्वेन मतलब द्वैत भाव से, पृथक्त का मतलब होता है चक्रवर्ती पाद यहाँ पर बताते हैं कि पृथक्त्वेन का मतलब होता है प्रतीकोपासक। प्रतीक कौन से होते हैं, जैसे कोई भगवान का सिंबल मानते हैं, जैसे कुछ लोग देवी देवताओं को मानते हैं कि ये क्योंकि भगवान ने बनाए हैं और ये देवता भगवान का ही प्रतीक है, प्रतीकोपासक। जो पहले हुए है ना एकत्वेन, वो क्या करते हैं अहंग्रोपासक। ये शास्त्र में लिखा गया है अहंग्रोपासक मतलब जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, और जो दूसरे नंबर पे है पृथक्त्वेन यानी वो प्रतीकोपासक होते किसी न किसी देवी देवता को या परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये भगवान का सिंबल है इसीलिए मैं इसकी भक्ति करता हूँ। वैसे जो साधारणतया देवी देवताओं की पूजा होती है ना वो ज्ञान यज्ञ नहीं होती है। यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने कहा है ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ने। वैसे तो देवी देवताओं की उपासना क्या होती है कर्मकांड का एक तरीका होती है जिसके द्वारा हम देवी देवताओं की पूजा करके उनसे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने इसका यानी कि वो ये मानता है कि देवी देवता ही भगवान का प्रतीक है इसलिए मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए, उसी से मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ, यानी कि वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं मानता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि परमेश्वर के किसी मनोकल्पिक रूप की पूजा करने वाला जो है ये दूसरी कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं, ये दूसरे लेवल के हैं। दूसरे लेवल के ऊंचे क्यों हैं ये, क्योंकि ये जो हैं वो आराध्य और आराधक के भेद को मानते हैं, वो जानते हैं कि मैं भक्त हूँ और वो भगवान है। तो जब उसको ये भेद पता चला, क्योंकि पहले वाले तो खुद को ही भगवान मान रहे थे ना, लेकिन अभी जो है वो उससे ऊपर के हैं कि वो एटलीस्ट ये जानते हैं कि आराध्य अलग होना चाहिए, मैं आराध्य हूँ और वो भगवान है, किसी को भी रूप को भगवान के माना है, तो इस तरह वो धीरे धीरे प्रगति करते हैं। और तीसरे नंबर पर भगवान ने कहा बहुधा विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम ये जैसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे सिकंद के चैप्टर नंबर 2 और 3 में हम इसके विषय में पढ़ेंगे, उसमें भगवान विश्वतोमुखम की पूरा संसार जो है वो भगवान का विराट स्वरूप है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। भगवत चेतना का पहला कदम है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान मानते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर भगवान बहुत बड़े हैं, इसे भगवान के विषय में यही धारणा है ना कि भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं, तो उनके मन में ऐसा आता है कि यदि भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं, तो वो इतने छोटे कैसे हो सकते हैं, कृष्णा तो कितना छोटा है, वो कैसे भगवान हो सकता है। अगर भगवान बहुत बड़े हैं तो भगवान मात्रा में भी बड़े होने चाहिए, उनके नेत्र, उनके जांघें, उनके हड्डियां, उनके हर चीज बड़ी होनी चाहिए। तो फिर ऐसा श्रीमद् भागवतम में ऐसा उदाहरण है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, बड़ा बड़ा जो ब्रह्मांड है वो भगवान का ही स्वरूप है। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, जितने भी पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, जितने भी वो नदियां हैं
वो भगवान की ये वाइन्स जिसमें से ये नसें हैं, ये जो नदियां हैं, वो समुद्र जो है वो भगवान का पेट है। और दूसरा, ये जितने भी तीनों लोक हैं ना, वो कैसे हैं, नीचे के लोग जो हैं वो भगवान के चरण हैं, ऊपर ब्रह्मलोक या ऊपर के जो लोक हैं वो भगवान का सिर है, और जो सेंटर के लोग हैं वो भगवान की छाती। मतलब सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, जितने भी वृक्ष हैं, वो सब भगवान के बाल हैं। तो हर चीज जो है वो ब्रह्मांड जो है पूरा भगवान का विश्व रूप है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूज्य है। इसे शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि तीसरे नंबर पे वो हैं जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले होते हैं। अभी ये इनको शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सबसे ऊंचे लेवल के हैं, वो एटलीस्ट भगवान को मान रहे हैं। मतलब वैसे तो भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये भौतिक प्रकृति तो भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान ने स्वयं कहा ना, अब भगवान ने जो कहा है हमें उसको स्वीकार करना है, भले ही विश्व रूप भगवान का एक स्वरूप है, परंतु वास्तव में भगवान ने क्या कहा है कि वो मेरा पोनलो वायु खमनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, भिन्ना है, मैं अलग हूँ, और ये जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी एक अलग शक्ति है, मैं इस भौतिक प्रकृति से अलग हूँ। भगवान ने बहुत दफा यहाँ पर समझाया हमें कि उदासीन अवदासीनम असक्तम तेश्वकर, कि ये मैं तो उदासीन के समान हूँ, मैं इस प्रकृति में समाया हुआ होते हुए भी मेरी एक अलग मेरा अस्तित्व है। तो ये भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, भगवान का कोई रूप नहीं होता, लेकिन क्योंकि भगवान अपने विश्व रूप के द्वारा, अपने विराट स्वरूप के द्वारा, अपने ब्रह्म तेज के द्वारा पूरे जगत में समाये हुए हैं, इसी के कारण ही यह जगत जो है वो चलायमान है। तो वो भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन वो लोग क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान का स्वरूप, एक कण कण में भगवान को देखते हैं, तो इससे भगवान की महिमा की जागृति व्यक्ति की चेतना में होती है कि हाँ भगवान इतना महान है, भगवान इतना विशाल है। तो इससे उनको ऐसा लगता है कि भगवान कितने विशाल है, बहुत विशाल है भगवान, हर एक वस्तु जो है वो भगवान पर आधारित है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है। किन में श्रेष्ठ नहीं, सबसे श्रेष्ठ तो हम पढ़ के आए, जो महात्मा होते हैं ना उनके विषय में हम पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पर जो महात्मा है और जो एथिस्ट है, उन दोनों के बीच के लोगों के विषय में बताया गया है कि कुछ तो खुद को ही भगवान मानते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, और कुछ भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। और भगवान ने क्या कहा है, इतना सुंदर शब्द है, ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा, अभी ये माम उपासते, वो भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करते हैं विभिन्न प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान यह कहना चाहते हैं, भगवान का यह मतलब शास्त्र में भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में आप कुछ भी करो, किसी की भी उपासना करो, तो आप मेरी उपासना करो, माम उपासते। भगवान ने कहा ये सब कर रहे हैं तो मेरी उपासना कर रहे हैं, आप किसी की भी पूजा करते हो तो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हो। भगवान ने कहा है स्वयं, ये अभ्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। इसी अध्याय के श्लोक नंबर 23 में भगवान बताएंगे कि जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वो भी यजन्ते श्रद्धयान्विता, वो श्रद्धा से उनकी उपासना करते हैं, तेपि माम एव कौन्ते है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु यजन्त्या विधि पूर्वकम, वो विधि सही नहीं है। तो अभी भी जो भगवान बता रहे हैं वो भगवान कहते हैं ये विधि सही नहीं है। पहले तो भगवान ने कहा महात्मा को तो दूसरा कोई काम ही नहीं है, वो क्या करते हैं,
वो क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढविता नमस्यन्त माम नित। उनको पता चल गया कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण ही भगवान हूँ, तो फिर वो समझो महात्मा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन बाकी सब भी करते मेरी भक्ति है, लेकिन वो अलग अलग गलत गलत तरीकों से करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 31 और श्लोक नंबर 14 बहुत ही सुंदर यहाँ पर शास्त्र में भागवत महापुराण में कहा जाता है, यथा तरुमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युते च। यथा तरुमूल, तर कहते हैं वृक्ष को और मूल कहते हैं जड़ को। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ को निषेचनेन सींचा जाता है या उसको जल दिया जाता है तो क्या होता है, तृप्यन्ति, तृप्त हो जाता है। क्या क्या? तो वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, टहनियां सब तृप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां, जीव की बहुत सारी इंद्रियां हैं, परंतु यदि वो आमाशय को अर्थात पेट को भोजन डालता है तो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज, यदि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पितृलोक हैं, जितने भी दूसरे महान पूजनीय पुरुष हैं, सबकी भक्ति हो जाती है केवल कृष्ण की भक्ति करने से। लेकिन जीव, आज का मनुष्य इस बात को समझता नहीं है, वो विभिन्न प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहता है, अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति करना चाहता है। वो करता भगवान की, भगवान ने कहा देवताओं की भी पूजा करोगे, देवताओं को तो छोड़े। मैं आपको बहुत हैरत की बात बताती हूँ कि यदि आप संसार में किसी की पूजा नहीं करते, केवल इंद्र तृप्ति करते हो, तो भी आप भगवान की ही उपासना करते हो। वो एक अलग बात है कि आप वो गलत तरीके से कर रहे हो। खाली अगर कोई इंद्र तृप्ति भी कर रहा है ना, तो भी वो कैसे कर रहा है। इंद्र तृप्ति का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं के द्वारा खुद को आनंद देना, अपनी इंद्रियों को आनंद देना। और अगर कोई मतलब, और भक्ति का मतलब क्या है, भगवान से प्रेम करना। भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम करना, और इंद्र तृप्ति का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं के द्वारा आनंदित होने का प्रयास करना। तो यह जितना भी संसार में जो कुछ भी है वो भगवान ही का एक स्वरूप है। तो अगर जीव जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करता तो वो क्या करता है, वो धन दौलत प्राप्त करने की कोशिश करता है ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, धन और दौलत के लिए भगवान को समय नहीं देते, कमाना है कमाना है कमाना है। लेकिन वेद व्यास जी के पिताश्री पाराशर मुनि भगवान की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्चय ज्ञान वैराग्यश्च एव षडनाम भग इति गणा, कि इस संसार में भगवान उसको कहा जाता है। भगवान का मतलब क्या है कि जिसके पास संपूर्ण धन हो, संपूर्ण सुंदरता हो, संपूर्ण बल हो, संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण वैराग्य हो, संपूर्ण यश हो, वह भगवान है। यानी कि जो जितना का जितना धन है वो भगवान का है, जितना का जितना सौंदर्य है वो भगवान की शक्ति है, जितना का जितना ज्ञान है वो भगवान की शक्ति है, ये सब भगवान की शक्ति है। तो जो लोग धन से आनंदित होना चाहते हैं वो भी वास्तव में भगवान के द्वारा ही आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति है। और वो भी समझो भगवान से ही प्रेम कर रहे हैं, धन से प्रेम कर रहे हैं तो समझो एक तरह से भगवान को ही प्रेम कर रहे हैं। अगर कोई भौतिक जगत में बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके आनंदित होना चाहता है, ज्ञान से प्रेमी, ज्ञान का प्रेमी है यदि वो ज्ञान पिपासु, तो भी वो एक विकृत रूप में भगवान से ही प्रेम कर रहा है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त प्रेम करने का कोई, प्रेम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त। लेकिन ये अलग बात है कि हम उस प्रेम को डायरेक्ट से कृष्ण को ना करके कृष्ण की विभिन्न शक्तियों से करते हैं। तो यदि कोई शक्ति उपासक है कि मुझे बहुत ज्यादा बल चाहिए, तो पूरा का पूरा बल जो है वो भगवान की शक्ति है, तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली भगवान को ही प्रेम कर रहा है। तो इस तरह से यदि हम कहें इस भौतिक जगत में कोई आनंद लेना चाहता है शराब पीकर, तो शराब पीकर भी वो आनंद लेना चाहता है, चाहता तो वो आनंद ही है। ये एक अलग बात है कि वो आनंद जो है वो डायरेक्ट से भगवान से नहीं लेना चाहता है, भगवान की कोई शक्ति से ले रहा है, चाहता वो आनंद है, यानी वो प्यार भगवान से कर रहा है। जीव आत्मा को भगवान के अतिरिक्त प्यार करना किसी से नहीं आता। इस भौतिक जगत में कुछ अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, है ना, कुछ अपने पति से प्रेम करते हैं, कोई प्रेमिका अपने प्रीतम से प्रेम करती है, वो समझते हैं कि यह ऑब्जेक्ट है मेरे प्रेम का, लेकिन वास्तव में वो उसके हृदय में बैठे हुए भगवान से प्रेम करते हैं। अगर ऐसा न होता तो कोई भी माँ अपने बच्चे की के शरीर को जब उसमें से आत्मा निकल जाती तो क्या वो उसको शरीर को जला देती? वो माता जो अपने पुत्र से इतना प्रेम करने का दावा करती है, वो वास्तव में भगवान से प्रेम कर रही होती है। वो पत्नी जो अपने पति से प्रेम करने का यह दावा करती कि मैं केवल अपने पति से प्रेम करती हूँ, वो वास्तव में कृष्ण से प्रेम कर रही है, क्योंकि जब तक उसके हृदय में कृष्ण है परमात्मा के सूरत में, जब तक उसके हृदय में कृष्ण का एक अंश है आत्मा के सूरत में, तब तक ही वो प्रेम का केंद्र है वो व्यक्ति। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपनी शक्ति को निकाल लिया, वो केवल एक निर्जीव वस्तु, उसको रखना, उसको प्रेम करना तो दूर की बात है, उसको देखना भी जीव पसंद नहीं करता। तो यहाँ भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि वास्तविक बुद्धिमानता क्या है, कि डायरेक्ट से भगवान की शरण में आया जाए। और अगर हम भगवान की शरण में आते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण कहते हैं माम उपासते, मुझे यदि कोई प्रेम करता है तो समझो सबका हो जाता है और किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान ने पहले बताया कल वाले श्लोक में कि जो वास्तव में महात्मा है वो तो सततम कीर्तयन्तो माम, वो सीधा नाम लेकर मेरा कीर्तन करता है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मुझसे प्रेम करता है और कंटिन्यूस मेरा नाम लेता है, मुझे नमस्कार करता है, मेरे स्वरूप को मानता है, नित्य युक्ता उपासते। संसार में यदि अपने कोई कार्य भी करता है तो भी वो यह सोच के करता है कि इससे कृष्ण को प्रसन्न करना है मुझे, इस कार्य के द्वारा मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ। ये है वास्तविक एक बुद्धिमान। भगवान बताते आज हम इस भौतिक जगत में हर एक बात को, हर एक चीज को अपनी बुद्धि से सोचते हैं, है ना। हम सोचते हैं बुद्धिमान क्या होता है, जो बहुत ज्यादा धन अर्जित कर सके, जो बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना सके, लेकिन ये हमारी छोटी सी बुद्धि बताती है। ऐसा शास्त्र जो बताता है ना, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि देने वाला है, वो स्वयं कहते हैं कि वास्तव में जो ज्ञानवान है वो माम प्रपद्यते, जो मेरी शरण में आ गया ना, समझो वही वास्तव में ज्ञानी है। बाकी तो यूं ही भटकते रहेंगे, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, अलग अलग रूपों में मेरी पूजा करते हैं पर ये नहीं समझ पाते, इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते कि जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही है, कृष्ण सब कुछ का स्रोत है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो ब्रह्मा जी ने बताया कि परम ईश्वर तो कृष्ण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, उसी से हमें आनंद प्राप्त होगा और बाकी सब प्रसन्न हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।